नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी। नमस्कार मोना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
और आगे बढ़े उससे पहले अब तक की हेडलाइंस जान लेते हैं। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम टी20 मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित शर्मा ही होंगे भारत की टीम के कप्तान। और विम्बलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अलकराज और यानिक सिनर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। महिला सिंगल्स में पूर्व चैंपियन एलिना रायबकीना और एलिना स्वीटोलिना भी अंतिम आठ में। बात क्रिकेट के मैदान से, सबसे पहले महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम टी20 मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। भारत के पास ये मैच जीतकर श्रृंखला बराबर करने का मौका है मोना, क्योंकि ये जो पहला मैच था वो भी हार गई थी 12 रन से इंडिया, और कल अच्छा बोला उनकी बारी आने लगी लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द हो गया।
बिल्कुल, और बहुत जरूरी है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इस श्रृंखला से ठीक पहले जो टेस्ट मैच हुआ था वो 10 विकेट से हमने दक्षिण अफ्रीका टीम को हराया था, और उससे पहले भी आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी हमने टेस्ट में करारी शिकस्त दी थी। तो काफी मजबूत टीम है ये, बात और है कि जो टी20 वर्ल्ड कप जीत का खुमार था उसमें ये खबर थोड़ी सी कहीं ना कहीं दब गई, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस लय को बरकरार रखने में, हालांकि पहले मैच में जो टी20 प्रारूप में टीम कामयाब नहीं रही, दूसरा मैच हो नहीं सका, बारिश की भेंट हो गया, तो ये डिसाइसिव मुकाबला है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस प्रारूप में भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट खेलने हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो एशिया कप हो, तो उसकी तैयारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि यहां भारत इस श्रृंखला में कम से कम बराबरी करे।
हालांकि वनडे में क्लीन स्वीप किया था 3-0 से, और कल का मैच देखा जाए तो बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 177 रन बनाए। देखा जाए तो जो भारतीय टीम की जो खराब फील्डिंग के कारण साउथ अफ्रीका ने 177 रन का विशाल स्कोर एक बार फिर से खड़ा कर दिया।
बिल्कुल, फील्डिंग में भारतीय टीम को ये एक ऐसा पहलू है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने कहा कि फील्डिंग से मैच जीते भी जाते हैं और फील्डिंग की वजह से मैच हारे भी जाते हैं, और अभी सबसे बड़ा उदाहरण हम देख चुके हैं एक कैच ने कैसे मैच बदला। तो उससे सबक लेते हुए, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चाहे वो महिला क्रिकेट हो चाहे वो पुरुष क्रिकेट हो, इतना फास्ट पेस्ड गेम हो गया, और ये प्रारूप तो ऐसा है कि यहाँ एक गेंद की कोताही या एक मैच एक कैच छोड़ना भी आप पर भारी पड़ सकता है। तो भारतीय टीम को इन पहलुओं पर कप्तान हरमनप्रीत कौर को जरूर ध्यान देना होगा।
हालांकि देखा जाए तो नो डाउट अगर पिछले मुकाबले देखें तो बहुत बेस्ट फॉर्म में लगी, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बोलिंग हो, राधा यादव हो, श्रियंका पाटिल हो, दीप्ति शर्मा हो, पूजा हो, और बैटिंग में अगर स्मृति मंधाना हो, शेफाली वर्मा, मतलब हरमनप्रीत कौर भी बहुत अच्छा चली, तो मतलब शायद एक तरह से कहते हैं ना कई बार बहुत खुमार आ जाता है, तो उसका भी शायद।
देखिए ये जो ग्रुप है इस टीम में, ये जो खिलाड़ी हैं ये काफी समय से साथ खेल रहे हैं, और इतना एक्सपोजर इन्हें अब मिल चुका है कि इन्हें हर टीम के बारे में उसके प्लस पॉइंट्स और उसके माइनस पॉइंट्स पता है, और विरोधी टीम का विश्लेषण करने के बाद ही उतरते हैं मैदान में, और यही वो खिलाड़ी हैं, शेफाली वर्मा हो चाहे हरमनप्रीत, तो सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, पूजा वस्त्राकर हो, ऋचा घोष हो, दीप्ति शर्मा हो, इन सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है लगातार भारत के लिए। तो मुझे लगता है वन ऑफ मैच को भुलाकर मुझे उम्मीद है कि कल टीम फाइट बैक देगी और जरूर ये मैच जीतेगी,
और एशिया कप के लिए भी यही टीम है ऑलमोस्ट,
और एशिया कप में तो बहुत कुछ स्टेक पर भी है, क्योंकि भारत सबसे कामयाब टीम है एशिया कप की, 7 बार की चैंपियन है, पिछली चैंपियन है, और इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा सिर्फ बांग्लादेश ने ही ये टूर्नामेंट जीता है। तो बहुत ही प्रबल दावेदार के रूप में भारतीय टीम उतरेगी, लेकिन यहां पर जैसे कि आपने कहा अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत है और हर अपोनेंट को किसी को भी हल्के में आप नहीं ले सकते। तो भारतीय टीम को जो कुछ कमजोर कड़ियां अभी नजर आ रही हैं उन पर काम करते हुए, जो जुलाई में एशिया कप है उसके बाद सितंबर अक्टूबर में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो यहां ध्यान देने की जरूरत है।
और आगे बढ़ते हैं, पुरुष क्रिकेट की ओर चलते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि रोहित शर्मा ही अगले साल होने वाले दो प्रमुख टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की कप्तानी करेंगे। बोर्ड के सचिव जय शाह ने कल एक वीडियो संदेश में कहा कि T20 विश्व चैंपियन टीम की कप्तान रोहित शर्मा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट में भारत की अगुवाई जारी रखेंगे। उन्होंने साथ ही भरोसा भी जताया कि भारत उनकी कप्तानी में अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगा। कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद ICC ट्रॉफी जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बने रोहित ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि हमारे अब दो फॉर्मेट्स में रोहित होंगे और जो दूसरा फॉर्मेट है हमारा T20 में उसकी उम्मीद है शायद हार्दिक पांड्या के साथ ही लगी हुई है अभी भी कप्तानी की।
जय शाह ने कहा है कि चयनकर्ता उसमें अपना सुझाव देंगे और बोर्ड उसके अनुरूप फैसला लेगा, लेकिन संभावना तो यही लगती है कि हार्दिक पांड्या ही कप्तान होंगे। और जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का सवाल है, तो बहुत पहले से क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा T20 विश्व कप से पहले भी जब कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित और विराट टीम में होंगे या नहीं, तो काफी पहले ही बोर्ड सचिव ने ये घोषणा कर दी थी कि रोहित की कप्तानी में ही टीम T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। तो एक कप्तान के लिए बहुत जरूरी होता है उसे बहुत पहले से ये पता हो कि उसे अपने हिसाब से टीम बनानी है, किन खिलाड़ियों पर क्या उसका योगदान वो चाहता है, किस खिलाड़ी से कैसा। तो यहां रोहित के लिए बिल्कुल क्लियर है क्योंकि T20 प्रारूप से दोनों विदा ले ही चुके हैं। अब एक फाइनल फ्रंटियर जिसको कहते हैं वो बच गया है, क्योंकि दो बार हम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे। पहले हमें न्यूजीलैंड ने हरा दिया, दूसरी बार हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। और आपने अगर वो वीडियो देखी हो कि जब राहुल द्रविड़ का जो आखिरी दिन था कोच, उन्होंने विराट कोहली से कहा था कि ऑल व्हाइट बॉल स्टिक्ड एंड वन रेड बॉल इज रिमेनिंग सो टिकट। तो यही रोहित के भी दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप की जीत का स्वाद चख लिया है और कप्तान के तौर पर चख लिया है, और अब वो चाहेंगे कि टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, क्योंकि जो प्यूरिस्ट होते हैं, जो क्रिकेट पंडित होते हैं, जो क्रिकेट विशेषज्ञ होते हैं, उनकी नजर में जो सबसे पिनेकल जिसको कहते हैं, जो सबसे ऊपर है, वो है टेस्ट क्रिकेट
जी।
और यहां पर जरूर वो अपना लोहा मनवाना चाहेंगे।
हालांकि पहले भी ऐसे हुआ है, अगर किसी ने T20 से संन्यास लिया हो तो उसको दूसरे जो फॉर्मेट से उससे भी कप्तानी छोड़नी पड़ी थी, ऐसा भी हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग जैसे हो सकता है रूल्स चेंज किए हैं BCCI ने।
देखिए, मुझे लगता है कि T20 विश्व कप जीतने के साथ अब दोनों 35-36 पार कर चुके हैं और अभी जरूरत है, इतना ज्यादा क्रिकेट आजकल खेला जा रहा है हर प्रारूप में, और भारत को भी टेस्ट मैच कहीं खेलने, ऑस्ट्रेलिया का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, तो इतना क्रिकेट खेला जाना है भविष्य को देखते हुए, क्योंकि 2026 में अगला T20 विश्व कप भारत में ही होना है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो अच्छे परफॉर्मर हैं, जैसे अब आप देखिए यशस्वी जायसवाल है या संजू सैमसन है या रिंकू सिंह है, अभिषेक शर्मा है, तो IPL में स्टार परफॉर्मर रहे हैं, अब इनके लिए टीम में जगह तो तभी बनेगी जब सीनियर खिलाड़ी जो ट्रांजिशन फेज जिसको हम कहते हैं बदलाव का दौर, वो जरूरी है।
बात विम्बल्डन कोर्ट से, विम्बल्डन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अलकराज और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिन्नर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अलकराज ने फ्रांस के उगो हम्बर्ट को 6-3, 6-4, 1-6 और 7-5 से हराया, जबकि सिन्नर ने अमेरिका के बेन शेल्टन को 2 घंटे 9 मिनट में 6-2, 6-4, 7-6 से पराजित किया। कार्लोस का मतलब कहना ही क्या, युवा खिलाड़ी है और US विम्बल्डन और फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, मतलब हार्ड ग्रास और
तीनों कोर्ट पर खिताब जीत चुके हैं, सिर्फ 21 साल के हैं और सबसे युवा नंबर वन प्लेयर बनने वाले खिलाड़ी हैं। और मुझे लगता है वो जब कोर्ट पे खेलते हैं तो असंभव को संभव जिस तरह से वो खेल रहे थे, और यहाँ पर लग रहा है कि सेमीफाइनल में फिर यानिस सिनेर से इनकी टक्कर होती नजर आ रही है। क्योंकि सिनेर को आप देखिए कि पिछली बार जोकोविच से हार गए थे, फिर जोकोविच और अल्कराज के बीच फाइनल हुआ था जिसमें जोकोविच हारे थे। तो यहां पर हालांकि अभी क्वार्टर फाइनल मुकाबला बाकी है, उधर उनको टॉमी पॉल से खेलना है और इधर इनको शायद दानिल मेदवेदेव से खेलना है जो काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो अभी कयास लगाना मुश्किल है। लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्म के आधार पर अगर हम आकलन करें तो सिचुएशन यही बनती नजर आ रही है कि अल्कराज और इनके बीच आपस में मुकाबला होगा।
पर यानिक ने जिस तरह से बेन शिल्टन को हराया, मतलब देखा जाए तो ये उनका बेन शिल्टन का दूसरा विंबलडन था और उम्मीदें थी कि जो उनके पिता थे ब्रायन शिल्टन वो क्वार्टर फाइनल में अपना एक मुकाम हासिल कर चुके थे और जो ये है बेन शिल्टन एक कदम आगे बढ़ेंगे क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर।
जी बिल्कुल, लेकिन फिर देखिए कि आप यानिक सिनेर का पिछला 2-3 साल का प्रदर्शन देखिए, काफी मजबूत खिलाड़ी हैं और अच्छा दमखम के साथ खेलते हैं, अनुभव उनके पास काफी है, तो विंबलडन में ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। और यहां पर भी अनुभव, हालांकि महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो वहां पर आप देखिए जिस तरीके से मुकाबले हो रहे हैं, शीर्ष 10 खिलाड़ियों में से शायद 2 ही खिलाड़ी बची हैं जो अगले दौर में,
बिल्कुल रायबकीना हालांकि वो भी वॉकओवर में आगे बढ़ी हैं। और मतलब कोको गॉफ के बाहर होने से तो मुझे भी बहुत हैरत हुई है कि एकदम से हार कर वो बाहर,
और विंबलडन में कुछ जिंक्स है उनका कि बाकी अमेरिकी ओपन जीत लिया उन्होंने, विंबलडन में वो कभी चौथे दौर से आगे जा ही नहीं पाई। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि शायद कुछ उनकी ट्रेनिंग में ऐसा चल रहा है जो उन्हें ग्रास कोर्ट पे रास नहीं आ रहा, तो उन्हें देखना पड़ेगा क्योंकि ये लगातार हो रहा है। और ऐसा नहीं कि प्रतिभाशाली नहीं, अगर नहीं होती तो दूसरे ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाती। तो यहां पर बड़ी निराशा टेनिस प्रेमियों को भी हाथ लगेगी क्योंकि इगा स्वियातेक पहले ही हार चुकी है और मेडिसिन की तो ये बड़ा उलटफेर भरा टूर्नामेंट चल रहा है। तो अभी आगे लगता है इस बार कोई एक नया चैंपियन निकलकर महिला वर्ग में तो आएगा।
बिल्कुल, कोको गॉफ को जिस प्लेयर ने हराया है वो भी अमेरिका की है, एमा नवारो, उन्होंने 6-4, 6-3 से हराकर उन्हें बाहर कर दिया। और नवारो ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। उधर यूक्रेन की एलिना स्वीटोलिना भी चीन की वांग शिन्यू को 6-2, 6-1 से हराकर अंतिम 8 में पहुंच गई है। और आपको बताते इस समय प्री क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वरेव का सामना अमरीका के टेलर फ्रिट्ज से चल रहा है और 7 बार के चैंपियन दूसरी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच आज डेनमार्क के होल्गर रून से मुकाबला करेंगे। बात हॉकी की, भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक से पहले स्विट्जरलैंड के मशहूर माइक हॉर्न्स बेस के लिए रवाना हो गई है, जिसके बाद टीम नीदरलैंड्स में एक अभ्यास शिविर में भाग लेगी। टीम ने मोना अभी बेंगलुरु में 2 सप्ताह का शिविर खत्म किया और अभी आप बेंगलुरु से ही आई हैं और अब स्विट्जरलैंड में माइक हॉर्न जा रहे हैं, तो ये साहसिक गतिविधियों का केंद्र है, किस तरह से ये अनुभव उनके लिए फायदेमंद होगा?
देखिए, जो कोच है साउथ अफ्रीका के क्रेग फुल्टन, उनका बहुत ज्यादा फोकस है टीम बॉन्डिंग पर। उनका ये मानना है कि प्रतिभाशाली तो सारी टीम है लेकिन आपस की जो केमिस्ट्री है खिलाड़ियों की, अल्टीमेटली रिजल्ट उसी से मिलता है। तो आपको याद होगा कि जनवरी में ये टीम को साउथ अफ्रीका टूर पे ले गए थे और वहां इसी तरह के टीम बॉन्डिंग सेशंस जहां कोई खिलाड़ी सर्फिंग कर रहा है, माउंटेन हाइकिंग कर रहे हैं, बीच पर बारबेक्यू कर रहे हैं, तो ये सब चीजें खिलाड़ियों को समझने में और आपसी तालमेल बढ़ाने की उनकी जो कवायद है उसका हिस्सा है। और यहां पर जो स्विट्जरलैंड का फेमस माइक हॉर्न्स है, यहां पर एडवेंचर एक्टिविटीज के जरिए उनका मकसद है कि मानसिक जो तैयारी है, दृढ़ता, जो खिलाड़ियों को डर पर जीत पाने की जो वो जरूरत है ओलंपिक से पहले दबाव को झेलने के लिए, वो 3 दिन का कैंप है। उसके बाद टीम नीदरलैंड्स जाएगी जहां नीदरलैंड और मलेशिया से कुछ अभ्यास मैच खेलने, क्योंकि आपको पता ही होगा ओलंपिक में हमें जो पूल ऑफ डेथ मिला है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, तो ये बड़ा ही एक कठिन सा पूल है और इसके लिए शारीरिक, तकनीकी, रणनीतिक तैयारी के साथ मानसिक तैयारी बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, आपको बता दें भारतीय टीम 20 जुलाई को पेरिस पहुंचेगी। और जाती आती खबर, फ्रांस में पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत के अविनाश साबले ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अविनाश साबले ने अपने ही रिकॉर्ड को एक सेकंड से भी ज्यादा बेहतर बनाया और वे छठे स्थान पर रहे। अब समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। मोना जी, आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
शुक्रिया।
श्रोताओं, अब प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स कैंप की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।